अभी अगली बात से शुरू करने से पहले, ये अभी जो हमने बात की थी कि प्रोपेगंडा और जो भी सोसाइटी में फैलती हैं चीज़ें, तो एक छोटी सी शेयरिंग सामने आ गई। एक नई रिसर्च है, 1 घंटा टीवी देखने का असर 24 घंटे आपके ऊपर रखता है। जो आप देखते हैं वही अंदर जाता है, जैसा इनटेक होगा वैसा ही आउटपुट होगा। तो आप देखिए कि बाज़ दफ़ा आपको ये खबर सुन लेते हैं ना, तो उसका असर फिर आपके दिल दिमाग पे रहता है। बिल्कुल इसी तरह से ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इससे इंसान को अपने आप को अवॉइड करना चाहिए और सोचने का मौका नहीं मिलता। आप खुद देखें कि बस बच्चे कैसे अपने आप को माँ बाप से बेनियाज करते हैं। मैंने देखे माँ बाप पुकारें, कुछ भी करें, किसी भी तरह से बात करें, वो सुनते नहीं। बस बच्चे इतने वो जिसको लटर मस्त वाली कैफियत में रहें कि उनके कानों पर जू नहीं रेंगती। इन चीज़ों का असर होता है, एक अपनी दुनिया नहीं बन जाती। कभी आप किसी को कानों में वॉकमैन लगाकर खड़े बैठे बस में ट्रेन में इधर उधर देखें तो आपको लगता है उनकी अपनी दुनिया है, उनको खोश नहीं रहती। तो ये चीज़ें हमारे दिल दिमाग पर असर रखती हैं। अब हम अगला टॉपिक करेंगे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बचपन से ये जुमला सुनते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि शायद हमें इसका यकीन अभी तक नहीं आया कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। सूरत मायदा में अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को एक दीन के तौर पर पसंद कर लिया। तो हकीकत है कि इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लिविंग। इस्लाम जिंदगी के हर पहलू को टच करता है। आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम में सर तो डाल दें तो पाँव खोल दो बाहर। मैं इस बात को कह रही हूँ तो मेरे जहन में बहुत सर्द दिन आ रहा है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं -15 -20 में, तो क्या करते हैं, सर से लेकर पाँव तक छुप जाए। कभी ऐसा आपने किया कि सर पे तो मोटी टोपी मफलर और आपने चादर ले ली, पाँव खुले छोड़ दें और पाँव बंद कर लें अच्छी तरह से, तो कान रख, आप देखेंगे एक हल्की सी दर्द भी रह जाए ना, हवा उसमें से घुस जाएगी। मुकम्मल सिक्योर्ड पर्सन कब होता है सर्दी से, जब वो हर तरह से अपने आप को सिक्योर करता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि वो जिसको कहते हैं फायर प्रूफ जैकेट, पूरी पहनी होगी तो आग से बचेंगे ना। अगर किसी जगह भी वो चीज़ ना होगी तो क्या होगा, आप वहाँ से अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि आपको पूरे का पूरा इस्लाम में आना पड़ेगा। मैं और आप इस्लाम की अधूरी तस्वीर बनाकर नहीं पेश कर सकते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम मुसलमान अधूरा इस्लाम लेकर पूरी सलामती चाहते हैं। ये जो आपको इस्लाम के अगेंस्ट बातें मिलती हैं ना इधर उधर लोगों से, ये नहीं वो नहीं क्या करें ये करें, इवन मैं इसमें आप सबको भी शामिल करूंगी जो नए नए मुसलमान हुए हैं कुरान पढ़कर, आप जब अपने घरों में जाकर इस किताब की कही हुई नसीहतों पर अमल करना चाहते हैं तो सुकून तो कोई नहीं रहता, घर में झगड़े ही उठते हैं, एकदम बातें ही बुलंद होती हैं। आप यहाँ से बड़े जोश ईमान के साथ निकलते हैं कि बस मैंने तो आज जाके ये कर देना है वो कर देना है, घर जाते हैं ये बात पेश करेंगे तो उसको देखकर लोग क्या कहेंगे, चलो बैठो आराम से मुझे ना सुनाओ। तो आप तो कहते हैं कि मैंने तो पढ़ा था कि इस्लाम आ जाए तो घर में बड़ी सुकून दीन, तो मेरे घर में क्यों नहीं आ रही। तो वही मिसाल याद रख ले कि घर के माहौल में भी पूरा इस्लाम नहीं है, साथियों में इस्लाम नहीं है। मैं आप सबको दुआ दूंगी कि अल्लाह आपको पूरे के पूरे इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दे। आप नहीं, आपके घर वाले, बच्चे, शौहर, वो लज्जत दुनिया में आपको जन्नत दिखाएगी। आप एक मुकम्मल इस्लाम की छत में आके तो देखें, आप एक बहुत बिग 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 अम्ब्रेला को सोचें, छतरी, बारिश हो रही इर्द गिर्द, आप उस अम्ब्रेला के नीचे हैं, आप बारिश को एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा। सामने किसी को देखे वो बारिश में भीग रहा, आप पूछते हैं सुनाओ बारिश रहमत है, वो कहेगा नहीं मजा आता है बारिश में नहीं, क्योंकि वो बेचारा तो पानी में ठुटर रहा। आप कह रहे हैं मुझे तो बहुत मजा आता है, आई लव बारिश, क्यों, आपकी छत बहुत बड़ी है, है? धूप है बाहर बहुत, लोग धूप में जल रहे हैं, आपके सर पे अम्ब्रेला, आपको धूप भी अच्छी लगेगी। दूसरे से पूछे वो कहेगा नहीं भाई बहुत गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी है। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मुझे तो मजा आ रहा है। पूरे इस्लाम की छत के नीचे आके देखें, अपने घर वालों से बात करें, चलो एक महीने के लिए सही। जिस जिस हद तक इस्लाम पे चल सकती हूँ, काम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, घर में माहौल अच्छा बना सकते हैं, उतना तो बनाएं। हम नहीं हुकूमतों को मुस्लिम कर सकते, हम नहीं कर सकते इदारों को मुस्लिम, जितना कर सकते हैं वो तो करें। आप फील करेंगे इस एक महीने में आपकी घरेलू जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। इस्लाम ने इतना खूबसूरत नक्शा खींचा है, इतना खूबसूरत नक्शा खींचा है एक खूबसूरत घर का। शर्त एक है कि हर बंदा मुस्लिम हो। ये जो बेजोड़ हमारे घर है ना, ये हमारे लिए दर्द सर बन जाते हैं। दो ही किस्म के लोग खुश देखे हैं मैंने दुनिया में, जो पूरे इस्लाम में है, सारे ही फिर पूरे का पूरा माहौल दीन का है, और या बिल्कुल नहीं है। पहले वालों को तो दिल का भी सुकून है और दुनिया की भी खुशी है ना, तो दूसरे जो वाले हैं ना बेचारे, उनको परवाह ही कोई नहीं किसी की। आप देखेंगे कि जिसको अल्लाह की परवाह नहीं ना, वो वक्ती तौर पे इस दुनिया को बहुत इंजॉय कर रहा है, लेकिन उसकी रूह बेचैन है, अंदर से परेशान है, चिलबिला रहा है, दुखी है, परेशान है। कल हम वॉक कर रहे थे तो कब्रिस्तान के पास से गुजरे, तो मैं उन कब्रों की तरफ देखकर सोच रही थी कि ये सब कहाँ गए। आखिर इंजाम कब्र है। आज मैं और आप ऊपर से गुजर रहे हैं, बाहर हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, ये तो खत्म हो गए। तो मेरी आपकी ख्वाहिश क्या हो कि एक दफा पूरा इस्लाम जिंदगी में आ जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। आज एक शख्स ईसाई मजहब कबूल कर लेता है और ईसाई मुआशरे का जुज बन जाता है, यूरोप में जाकर किसी ईसाई मुल्क में रहना शुरू कर देता है। इसमें क्या तब्दीली आएगी? एक तब्दीली ये आएगी कि वो इतवार के इतवार चर्च में जाकर इबादत करेगा, और जो निज़ाम वो सियासी तौर पर अपनाएगा वो तो इंसानों यानी मगरबी मुफक्किरीन का बनाया हुआ है। ये जमहूरी निज़ाम हज़रत ईसा का निज़ाम तो है नहीं। जो माशी निज़ाम वो इख्तियार करेगा, ये सरमायादाराना निज़ाम जो सूद पर कायम है, ये निज़ाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ तो नहीं है, या अल्लाह का निज़ाम तो नहीं है, ये तो इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है। इसका तो ईसाइयत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। माशरती तौर पर जो रस्म व रिवाज और जो ज़िंदगी वो इख्तियार करेगा, इसका भी ईसाइयत से कोई ताल्लुक नहीं। आप नोट करें, जिस तरह आज हम मुसलमान इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे ना, इसी तरह आज के क्रिश्चियंस अपने इस क्रिश्चियनिटी के रिलीजन पे भी अमल नहीं कर रहे। वो अदालती कवानीन, रस्म व रिवाज, वो सारे के सारे इंसानों के बनाए हुए। एक शख्स अगर ईसाई मजहब कबूल करता है तो इसकी इज्तमाई जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वो तो ऐसी जिंदगी इख्तियार करेगा जो इंसानों की बनाई हुई है। सियासी निज़ाम, मुआशी निज़ाम और माशरती निज़ाम, गरज के जिंदगी के हर इज्तमाई इंतजाम में तो वह इंसानों के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। इसका ईसाइत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह अगर आज एक शख्स हिंदू हो जाता है तो वो मंदिर में जाके भजन गाएगा, इसके बाद इज्तमाई जिंदगी, सियासी जिंदगी, मुआशी निज़ाम, अदालती निज़ामों, कवानीन, किसी का भी हिंदू मत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं। यही हाल दुनिया के तमाम अदियान और मजाहिब का है। किसी के पास कोई इज्तमाई निज़ाम नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम है कि इसका एक निज़ाम है, वो पूरे के पूरे निज़ाम हयात पर हावी है। और इस्लाम की दावत भी यही है कि इस्लाम कबूल करना है तो फिर पूरे के पूरे निज़ाम को कबूल कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबी खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वु मुबीन। अहले ईमान, अगर दीन में दाखिल हुए हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान के नक्शाए कदम की पैरवी न करो, क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह बकरा 208 है। अब थोड़ा सा इस आयत पे गौर कीजिए। हमने इसकी तफसीर में भी बड़ी डिटेल से ये बातें डिस्कस की थी, लेकिन मैं और आप इसको थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकली जो हमारे इर्द गिर्द के हालात हैं। अल्लाह ताला कहते हैं पूरे इस्लाम में आओ। दो तरह की बात है, तुम सारे आ जाओ इस्लाम में ऑल टुगेदर, और दूसरा ये कि तुम पूरे इस्लाम में हो, फर्क समझ आए, तुम खुद भी पूरे के पूरे इस्लाम पे हो और तुम सारे मिलके आ जाओ। ये दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। बाहर का माहौल बनाए बगैर आप अकेले इस्लाम पर चल नहीं सकते। हमारा दीन इनफिरादी दीन नहीं है, इज्तमाई दीन है। इवन आप अपने बच्चे अपने शौहर को लेकर इस्लाम की रोड पे चल भी पड़ती हैं ना, तो आपके बच्चे मामू के घर जाएंगे, नाना के घर जाएंगे, चचा को मिलेंगे, फूफियाँ उनके घर में आएंगी, दादा दादी भी आएंगे, उन सब के इफ़ेक्ट्स आपके बच्चों पे पड़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अपना घर साफ नहीं कर सकते, घर साफ करेंगे, बस एक बंदा बाहर से आएगा तो मिट्टी वाले पाँव लेके आ जाएगा, दूसरा कीचड़ के ले आएगा, तीसरा बर्फ लेकर आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो अंदर आएगा ना। जब तक बाहर, फिर बाहर से गली गली से मोहल्ला साफ नहीं होगा, आपका घर साफ नहीं रहेगा। इस्लाम की जो बुनियादी दावत है ना, वो कम्युनिटी को पाक करना, तत्हीर, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, नजरों की सफाई, आंखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, सोचों की हिफाजत। एक बच्चा घर से निकलने से लेकर वापस घर आने तक कोई ऐसा मंजर ना देखे, कोई ऐसा सीन ना देखे जिससे उसके छोटे से जहन के अंदर कुछ बबल्स उठे। एक मर्द अपनी बीवी को घर में छोड़कर जब निकले तो सारे दिन के काम के बाद जब वापस आए ना, तो रास्ते में किसी फितने का शिकार ना हो चुका हो। खूबसूरत इस्लाम ये होता है। एक औरत घर में रहकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करे। देखिए, होम स्वीट होम का आप एक खूबसूरत सा मंजर तो लाए, मर्द की नजरें पाक, अपनी बीवी से हसीन उसको कोई नहीं लगता, अपनी बीवी से अलावा किसी को देखना उसके लिए हराम, ख्वाहिश उसने अपनी बीवी से पूरी करनी है, उसकी नजरों में बीवी जचेगी, उसी के पहनने ओढ़ने को उसने एडमायर करना है, उसी के बनाए हुए खाने को खाकर वो खुशी महसूस करता है। वो सारा दिन घर से बाहर रहता है लेकिन उसका दिल लटका रहता है, मैं कब घर में जाऊं और अपनी बीवी के साथ बातें करूं। कंपेनियनशिप, किसी को क्या लगे कि वो मोटे गद्दे पे सोए या पतले गद्दे पे सोए, वो बेड उसका 20,000 का हो या 50 का हो या 5 का, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे। आपको कहते कि नबी सल्लम बोरिए पे सोते थे, लेकिन आप अपनी बीवियों के साथ इतनी हसीन जिंदगी बसर करते थे कि दुनिया की बड़ी बड़ी लव स्टोरीज उसके आगे हैच है। ये खूबसूरत इस्लाम है। एक मर्द की हर ख्वाहिश जो पूरी हो गई, उसको नजायज को देखना ही क्यों है। लेकिन जब बीच में कोई फ्लक्चुएशन आती है, आप कहते हैं टीवी देखने से क्या होता है, क्या नहीं होता, मैं कहूंगी एक औरत जो आपको स्क्रीन पे नाचती फुदकती दिखती है, क्या ख्याल है मर्द अपनी बीवी से तकबल नहीं करेगा उसका? इंसान तो फौरन तकबल करने लगते हैं। मैंने देखा किसी दूसरे की बीवी का कोई अमल देखकर मर्द फौरन मुतासिर हो जाते, तुम तो ऐसे नहीं करती, फलां तो ऐसे करती है ना, असर होता है ना इस बात का। तो जब आप अपने मर्दों की नजरों को पाक रखते हैं इन चीजों से, तो आप देखिएगा कि वो द बेस्ट हस्बैंड, ना उनकी आपसे उल्टी सीधी डिमांड्स हैं, ना आपके कोई बहुत बड़े उल्टे सीधे ख्वाब हैं। आप एक लड़की या औरत पे भी ये रख लीजिए, आप देख लें, एक औरत बेकार सवाल ही नहीं करती, उसको चाहिए नहीं $1,000 का पर्स, उसको क्या लगे 1,000 से या 1,200 से, उसको ये पता है कि जो मेरा मर्द ले आता है मेरे लिए वही काफी है, जो मेरे मर्द की कमाई है जिसमें मैंने गुजारा करना है, और चीज टूटेगी तो नहीं ले लेंगे, दूसरी चीज का एक वक्त में सवाल ही नहीं पैदा होता। सुकून ही सुकून है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आज हम मुसलमान भी जिंदगी को इंजॉय नहीं कर रहे, और जो वैक्यूम रह जाता है ना खला, उसको चीजों से फिलअप करते हैं। बच्चों को ये ले दो, आप देखिए जो बाप बच्चों को टाइम नहीं देते ना, और बीवी जिसे गुस्सा करेगी ना, तो बाप बच्चे को पकड़ेगा उंगली लगाकर, चलो बाहर जाएगा, वहां से दुकान से 2-4 चॉकलेट गोतरी शोतरी ले दे के कहेगा चलो घर जाओ मम्मी के पास, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। वो अपने वक्त की कमी को पैसों से और चीजों से पूरा करना चाहते हैं, तो ये इस्लाम नहीं है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम कब तक ऐसा करेंगे। वैसे मैं अभी जब इस दफा पाकिस्तान गई ना, तो मैंने अक्सर लोगों से ये बेतुका सवाल किया जो मुझे भी पता था पॉसिबल नहीं। मैं देखती थी हर चीज टेढ़ी मेढ़ी, और जहां जिसका दिल करता है उसने घर बना लिया, जहां जिसका दिल करता है रोड के बीच में कोई खड़ा हो गया दुकान, मतलब आप देखते हैं कि हर तरफ डिसऑर्गेनाइजेशन है फिजिकली भी, फिर उसमें चलना फिरना ट्रैफिक ये सब है। तो मैं इनको कहती थी कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी जगह खाली है हमारे मुल्क में माशाल्लाह, बड़े बड़े खेत हैं और हर आबादी के साथ थोड़ी दूर जाएं तो बहुत कुछ है। तो मैं सोची थी क्या ये मुमकिन है कि हम एक खाली जगह पे, एक जो मिसाल है कि आप ये लिंदेबर्ग का इलाका ले ना, ये कीवी है या ये एरोप्रेस है, ये दुकान है, ये है दो चार चीजें। अब अगर ये टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई खराब है तो हम क्या करें कि ये थोड़ा सा बाहर निकलें पीछे, तो वहां ये सब पहले बना लें साफ सुथरा, नए वक्त का जमाने का रिवाज का सब बन जाए, इन सब को उधर मूव करके इसको प्लेन कर दे, ये गार्डन बन जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं कहती थी क्या ये मुमकिन है कि हम ये टेढ़ी मेढ़ी चीजें सारी तोड़कर एक नया पाकिस्तान बना लें। तो वो कहते बनाना किसने, हमारा तो अभी कर्जा ही नहीं पूरा हुआ। ये हो सकता है ये ड्रीम? वैसे आप देखिए कुछ अंदरून के शहर है ना, आप लोग भी जाते होंगे, जैसे मैं सियालकोट जब भी कभी गई हूँ, पहले भी कभी जाती थी जब वहां रहते थे तब भी, तो मैं सोचती थी ये किसी ने प्लानिंग से कोई नहीं बनाया हुआ, टेढ़ा मेढ़ा ऊंची गलियां, पर इतनी पतली गलियां, बार जब गाड़ी नहीं आती और लोग गाड़ी घुसाने की कोशिश करते। तो मैं सोचती थी कि ये इतना समझी क्यों की है इन लोगों ने, इतनी खुली जगह वहां जाके खुला जगह बना ले, कितना को लगेगा वक्त, जरा एफर्ट करें, सोच लगाएं, इसको बाद में ढा दें, उसको बना लें। तो उन्होंने मुझे, किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि ये उस दिन होगा जिस दिन हम मुखलिस होंगे, हमारा तो अभी कर्जा ही नहीं दूर हुआ। उन्होंने जिनसे बात की उन्होंने कहा कि हम तो अपना कर्ज अदा करने के लिए फिर कर्ज लेते हैं तो हम कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप सोच लें तो ये हो जाएगा। दुनिया में आप देखिए मुहज्जब कौमें, पढ़ी लिखी कौमें कैसे करती हैं काम, वो डिमोलिश करते हैं चीजों को फिर नई चीजें बना लेते हैं। तो मुझे और आपको इस वक्त लोगों को एक खूबसूरत ख्वाब दिखाने की जरूरत है। अरे आप देखिए पूरा इस्लाम में दाखिल होना सिक्योर्ड कैसे है, आप नीचे से बैठते हैं लिफ्ट में, पूरे लिफ्ट के अंदर आ जाएंगे तो सिक्योर है ना। इमेजिन करें भी आपका एक पांव लिफ्ट में और एक बाहर हो और लिफ्ट चल पड़े, गाड़ी के अंदर एक पांव और एक बाहर है तो गाड़ी चल पड़े, इनसिक्योर्ड है ना। किनारे पे बैठे ही डूबते हैं, कश्ती की जो साइड्स होती है ना दोनों, उस पे जो बैठते हैं उसको ज्यादा डर लगता है, जरा सी कश्ती हिलेगी उसको लगेगा मैं पानी में गिर गया, उधर हिलेगी वो गिरेगा, और जो मिडल वाला है वो इंजॉय कर रहा होता है, वो कह रहा है झूले मिल रहे हैं। पूरे इस्लाम में आएंगे ना तो आपको इस्लाम खूबसूरत लगेगा। फिर वो मिसाल मुझे याद आ रही है जो सबीलुल जन्ना में भी आपको इस आयत पे दी थी कि पिज्जे का सबसे टेस्टी और लजीज हिस्सा कौन सा होता है। चले आपको पिज्जा नहीं भी पसंद मेरी तरह तो आप कीमे वाली रोटी कह लें, आलू वाली मूली वाली रोटी, सबसे मजे का हिस्सा क्या होता है? अंदर का। लोग किनारे खाते रहते हैं क्योंकि मैं आखिर में वो अंदर का हिस्सा खाऊंगा, और वो अंदर का ही उठा के कोई खा जाए तो आपकी जान निकल जाती है कि मैंने ही पहले खा लिया होता, होता है ना। किनारे सख्त होते हैं रोटी के, पिज्जे के भी किनारे खुश्क होते हैं, ऐसे ही है ना। जो लोग बाहर से इस्लाम को देखते हैं ना उनको इस्लाम खुश्क लगता है, ड्राई। बाहर से मुराद मैं गोरे नहीं कह रही, ये अपने कालों को भी, जो लोग दूसरों को पूरे इस्लाम में देखे हो कि तो फलां का घराना बड़ा सख्त है भाई, छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब कराने लग जाते हैं, ये तो उतारो, ये क्या किया हुआ है, देखो इनके लड़के तो बचपन में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो ऐसी रिलीजियस फैमिलीज को देखकर कहते हैं बोरिंग फजूल, हमारी बेगमत देखें 10-10 हजार रुपये देके तैयार हुई हैं, अब कैसी मॉडल्स लग रही हैं और देखना अब शादी में धूम मच जाएगी, उनको ये स्टाइल अच्छा लगता है। वो कहते हैं ये क्या बेवकूफ है, तैयार भी होके आई हैं तो पर्दों में बैठी हुई हैं, उनको नहीं मजा आता क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं। आप थोड़ा सा अंदर आए कि कम इन कम इन साइड कम इन साइड, आप जितना अंदर आएंगे आपको इस्लाम सॉफ्ट लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा, और आपको उसकी खूबसूरतियां अपनी जिंदगी में दिखेंगी। और मुझे लगता है कि इस वक्त का ये जिहाद है, कम अज कम अपने मुसलमानों को भी पूरा इस्लाम दिखाओ। और आपको पता है कि पूरा इस्लाम लेने से रोकने वाली चीजों में एक बहुत बड़ी चीज के आज के दौर में फिरकावारियत, फिरकावारियत, लोग फिरकों से जान नहीं छुड़ा पाते, उनको पूरे इस्लाम की बात क्या करें आप। हम बाज खुशी के मौकों को अपने लिए अजाब बना लेते हैं, टेंशन स्ट्रेस नाराजगी, जिस वक्त का आपने ख्वाब देखा होता है ना पिछले 10 साल से, मेरे बच्चों की शादी हो, मेरे बहन भाइयों की शादी हो, वो मौके टेंशन में गुजर जाते हैं, सब इंजॉय करके जाते हैं आपके घर की शादी को सिवाय आपके। लोग तो पहन के भी आ जाएंगे, ओढ़ के भी आएंगे, खा भी लेंगे, तनकीद भी करेंगे, तबसरे भी करेंगे और खूब इंजॉय करके जाएंगे, और आप गए भी हॉल में दुखी थे परेशान थे और वहां से निकले भी तो भूखे ही निकले थे, सर पे दिमाग पे बोझ है। मुझे फील होता है कि इस्लाम आपको आपकी अपनी जिंदगी गुजारना सिखाता है, जो ये गोरों का स्टाइल है ना कि आई डोंट केयर, रियली इस्लाम आपको ये सिखाता है, आई डोंट केयर। हाँ बस सिर्फ फर्क इतना है कि आई केयर अल्लाह। एक गैर मुस्लिम कहता है आई डोंट केयर, किसी की भी नहीं केयर। आप कहते नहीं बस मुझे अल्लाह की केयर है और अपनी केयर है, तुम जो कहते हो कहते रहो। तो आप इसके ख्वाब देखा करें अपने बच्चों के साथ। ये तो आपकी घरेलू सतह छोटी सतह पे बात है ना, फिर इसी से आप देखिएगा कि इस पिक्चर को जरा सा बड़ा करें। वो जैसे जूम इन जूम आउट होता है ना, आप इस्लाम की पिक्चर को छोटा बड़ा करके देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि इस्लाम एक मुकम्मल सियासी मुआशी मुआशरती निज़ाम देता है। सियासी निज़ाम क्या है? पॉलिटिक्स। मुआशी क्या है? जिसमें आपके इकोनॉमिक्स हैं। और मुआशरती क्या है? सोशल लाइफ। आप एक ट्रायंगल बनाकर देखें, तीन चीज़ों को आप कोनों में लिख लें, एक लाइन के ऊपर सियासत लिख लें, दूसरे पे अपनी माशियात लिख लें और तीसरे में आप लाइफस्टाइल है। आज मैं और आप इस तीनों को ही टैली करके देखें, सियासी तौर पे जब इस्लाम आता है ना पूरी उम्मत सिक्योर्ड हो जाती है। मिसाल हजरत उमर फारूक के दौर के, अच्छे लॉस बनते हैं, जुल्म नहीं है, बर्बरियत नहीं है, सियासतदान बहुत मुखलिस हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, छोटी सी बात की जवाबदही पर रातों को रोते हैं, गरीबों का बेवाओं का बोझ उठा के कमर पे फेरते हैं। ये सियासी इस्लाम होगा। एक ड्रीम तो देखें, पूरी सियासत मुल्क की, जो आप कह लीजिए कि एक मुल्क का एक निज़ाम है वो इस्लाम के अंडर आ जाए। डेमोक्रेसी तो वहीं फौत हो जाएगी, जमहूरियत तो कत्ल हो गई। आप एक आला इंसान को जो आप सब में से ज़्यादा हक रखता है मुल्क के मामलात को चलाने का, अल्लाह से डरने का, उसको खलीफा बना लेते हैं। आप उसको खलीफा के, वजीर आजम के, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लोग कहते हैं नाम बदलो, खलीफा रखो लफ्ज़ फिर ठीक होगा। आप जरा आजकल के हुक्मरानों के नाम के साथ खलीफा लफ्ज़ लगा के तसव्वुर तो करें, सर शर्म से झुक जाता है ना कि खलीफा साहब ये कर गए, खलीफा साहब के जोक तो और ही बदनाम करेंगे ना। इस्लाम नामों से नहीं होता, सिस्टम। और सिस्टम क्या होता है, निज़ाम क्या है? ये कोई जामित, जामित कहते हैं जिस स्टेगनेंट, खड़ी हुई रुकी हुई चीज़, गैर लचकदार और सर ब मुहर खाने, यानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं। यानी आप जब कहते हैं ना निज़ाम बदलो, तो निज़ाम क्या है? निज़ाम दो चीज़ों पे बेस्ड होता है। नंबर एक बुनियाद क्या है? चंद लाजमी बुनियादें हैं जिनको इख्तियार करना पड़ेगा, आप इनको छोड़ नहीं सकते। और दूसरी हदूद, लिमिटेशंस, इन हदूद से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इन बुनियादों के ऊपर और इन हदूद के अंदर जो भी निज़ाम बनाएंगे वो इस्लामी होगा। आप इस रूम से समझिए कि इस रूम के नीचे एक फाउंडेशन है ना जो ज़मीन के अंदर गई, और दूसरी इसकी वॉल्स हैं। फाउंडेशन बुनियाद है और वॉल्स जो है ना ये हदूद है। आप इस कमरे को बड़ा नहीं कर सकते, आप जो करना है इसके अंदर करेंगे। आप मैं इस्लाम के कमरे को बड़ा नहीं कर सकते, छोटा भी नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ तो हमारे लिए मुमकिन है गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर इस विंडो को बंद कर दें, इधर दरवाज़ा खोल के नीचे सीढ़ी लगा लें, मिसाल दे रहे हैं हम, ये डोर बंद कर दें, इन साइट हम कर सकते हैं ना। इस्लाम के कमरे में ना खिड़की बना सकते हैं आप, और ना दरवाज़ा लगा सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं ना लगा सकते हैं। नहीं, घुटन हो रही है, ये पर्दे की खिड़की बंद कर देते हैं। अच्छा ये खिड़की थी ना, इसको खोल के ज़रा बड़ा सा आप दरवाज़ा ही बना दो और ये दीवार ही गिरा दो, कुछ नहीं होता। आज के दौर में ये हिजाब लिबास की पाबंदियाँ नहीं बर्दाश्त होती। सॉरी वी कैंट, इट्स अनऑथोराइज, मैं आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, करना के इस कमरे के अंदर वक्त के मुताबिक कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ये हर दौर में हुआ। आप इसमें वक्त के मुताबिक थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। मसलन सियासी निज़ाम को लीजिए, इस्लाम और दूसरे मजाहब में बुनियादी फ़र्क यह है कि वो सिर्फ आखरत की बात करते हैं कि तुम नेकी करो, तुम्हें आसमानी बादशाहत मिलेगी, तुम्हें आखरत में ये दर्जा मिलेगा। हमारे यहाँ आसमानी बादशाहत बाद में आती है, पहले इस दुनिया की बादशाहत आती है। ऐ अल्लाह पहले इस दुनिया को हसीन ज़िंदगी बादशाहत नसीब फरमा, फिर आखरत की बादशाहत नसीब फरमा। और इस दुनिया की बादशाहत इस्लाम में गलबा दीन के रास्ते से आ सकती है। दीन को ठीक ठीक नाफिज करो, दीन के निज़ाम शरीयत को इसके सियासी निज़ाम معاشی نظام اور معاشرتی نظام کو نافذ کرو تو اس دنیا کی بادشاہت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور اس پر یقین ہونا چاہیے۔ بات سمجھے آپ؟ یعنی کتنا آسان ہے، جو ہمیں دعا سکھائی گئی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، اس ایک دعا میں آپ کے پاس اسلام کا ایک خوبصورت نقشہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ سے کہا کریں، اے اللہ مجھے دنیا کے بھی دکھ نہیں چاہیے، میں دنیا کی گھٹن نہیں چاہتی، تنگی نہیں چاہتی، مجھے سسک سسک کے نہیں جینا، مجھے دنیا کی زندگی اتنی خوبصورت دے کہ لوگ میرے اوپر رش کریں کہ واہ یہ دین پہ آئی تھی نا، دیکھو اس کی دنیا کتنی حسین ہو گئی ہے۔ اور یہ وقت آتا ہے، لیکن بیچ میں جو ایک بڑا پہاڑ آتا ہے نا بیچ میں، جو سب کے چھٹنے کا، اس سے کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ یقین کریں آپ جس رستے پہ چلے، اگر آپ چلتے رہ گئے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کو مبارک دیں گے کہ عقل مند آپ ہی تھی، ہم تو بیوقوف تھے۔ میں نے بہت لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے اپنے خاندان میں ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جو بہت کٹر ریلیجس، کہ وہ اپنے بچوں کے گھروں میں بھی شادی پہ نہ جائیں اگر وہاں ایک چھوٹی سی بات ان کے خلاف میں خلاف شرع ہو۔ ایک تو ہماری نظر میں نا، وہ ان کو تو اگر بیٹی کے گھر میں بچے کی برات آ گئی ہے، یعنی بیٹی کی برات آ گئی ہے، تو کہتے ہیں یہ غیر اسلامی ہے، کہ اسلام میں برات کا لفظ نہیں تو میں نہیں آؤں گا۔ مثال دے رہی ہوں، بہت خاندان کے لوگ اپنے آپ کو وہ کہنا چاہیے سیکیور کرنے کے لیے ان کو باتیں بھی کرتے، بڑی تنگی ہے، بڑی بش ہے، یہ ہے وہ، مذاق بھی کرتے کئی لوگ باتیں باتیں۔ لیکن وہ بندہ ایک شعر پڑھتا تھا ہمیشہ، کہتا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں اللہ بندے کو سب کے سامنے کہہ دے کہ یہ میرا بندہ سب سے ناراض ہے میرے لیے، کچھ اس طرح کا ایک شعر ہے، کہ میری وجہ سے لوگوں سے یہ ناراض رہتا تھا، کہتے میرا تو یہ حال ہے۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جب ان کے پھل کاٹتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، بچے بچوں کے بچے دین پہ لگ گئے، باپ نے سختیاں کی، ان کے بارے میں معروف تھا اپنے بچوں کو دنیا پڑھاتے تھے، 1,00,000 روپیہ دے کے الگ کر دیتے تھے، کسی کو سعودی عرب یونیورسٹی بھیج دیا، کسی کو مدینہ میں۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کے بچوں کو باہر داخلے مل گئے پاکستان کی تعلیم کے بعد، آج سب خوشحال ہے۔ میں اکثر اپنے گھروں میں بھی مثال دیتی ہوں ان لوگوں کو جو ہر وقت ہی حالات کا رونا روتے ہیں، کاروباری حالات ایسے، پالیسیز گورنمنٹ کی خراب، یہ وہ، مارا ماری پہ لگے ہیں، کاروبار شروع کریں پھر دوسرا کریں تیسرا، کروڑوں ہے پھر بھی لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اس خاندان کی کبھی آپ نے کوئی ملیں دیکھی ہیں، کوئی ان کی مل ہے، کوئی ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں، کوئی بڑی بڑی دکانیں، لیکن آپ دیکھیں کہ معروف ہے کہ وہ جب اپنے ملکوں میں آتے ہیں تو اتنی پراپرٹیز خرید کے جاتے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ رزق اللہ سے آتا ہے، سکون ہے۔ اور آہستہ آہستہ لوگوں نے دل سے تسلیم کر لیا کہ دین پہ چلنے والوں کا ہی طریقہ ٹھیک تھا، اولادوں کی کامیابیوں کی صورت میں، ان کے رشتوں کی صورت میں۔ پھر ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں، پھر آپ کو موقع دیتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ پورا اسلام لائیں گے نا، آپ اپنے بچوں کی پوری خوشیاں دیکھیں گے۔ یہ جو آج آپ اور میں پریشان ہوتے ہیں نا، گھروں کے ماحول اچھے نہیں ہیں، بہویں سنتی نہیں ہیں، داماد بڑے اکڑے اکڑے رہتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہمارے رشتے ہوتے ہیں اس وقت ہم کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ٹکر ہوتی ہے حالات سے، ہم موسٹ لائکلی جس لائف سٹائل میں جی رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کو دین کی پیک کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے نصیحت کروں گی کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اب نہیں تو 2-4 سال بعد اپنے بچوں کے رشتے کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ اب آپ 4-5 سال سے قرآن پاٹھ سن رہے ہیں، آج سے اپنا گول بنائے اپنے سے زیادہ دین والوں سے وابستہ ڈالنا، یعنی میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو لڑکی ڈھونڈنی ہے نا، بیٹے سے زیادہ دین والی ڈھونڈنی ہے، بیٹی کے لیے اس سے زیادہ اسٹرانگ دین والا لڑکا لینا۔ ایک سمپل کرائٹیریا نا، ایک جملے میں بات سمجھ آئے گی آپ کو، کیونکہ ہمیشہ کشش ہوتی ہے برائی میں۔ میں نے دیکھا اچھے بھلے دیندار بدک جاتے ہیں جب ان کا واسطہ اپنے سے کمزور پہ جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے مضبوط ہیں، بس آپ نے اپنے بچے کی بہترین تربیت کی ہے، یہ بھی فرق ہے، ایک آپ اپوزٹ اینگل بتانے لگی ہوں، آپ کا بچہ ماشاءاللہ انکمپرومائزنگ نمازوں پہ، جو مرضی کر لیں اس نے نماز پڑھنی پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، آپ کا بچہ ماشاءاللہ حلال کا اور عادی اور کچھ نہیں، پھر بگڑی سے بگڑی لے کر آئیں وہ ٹھیک کر لے گا اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ देखिए पुल जिधर ज्यादा होता है ना चीज उधर खिंचती है। आप पहाड़ पे कोई चीज खींचना चाह रहे हैं तो ऊपर अगर स्ट्रांग ब्रिज है तो चीज नीचे से ऊपर जाएगी, और अगर ऊपर वाले हाथ ही कमजोर हैं तो उसको लेगी। अगर आपके अपने बच्चे दीन में ज्यादा है ना तो थोड़ा सा कमजोर दीन वाला बंदा चल जाता है, वो कहता है इट्स फाइन नो प्रॉब्लम इसको भी ठीक कर लूंगा, बल्कि कई बच्चियों की हिदायत का जरिया बन जाते हैं कई मर्द। जैसे मुझे एक किसी की बात याद आ रही है कि वो बच्चा, मैं हमने बचपन से नमाजी देखा है, फजर के बाद बच्चे पढ़ के आ जाते थे नमाज घर में, वो वहां कुरान पढ़ता था, उसकी बचपन की ये रूटीन देखी है। तो खैर जब शादी हुई तो आम जैसे दुनियादारी के साथ हुई, भाई ठीक है बच्ची 900 मसलात की पाबंद है वट एवर। खैर किस्सा मुख्तसर, बाद में क्या हुआ हालात के मुताबिक तो वो उनकी अम्मी सुनाती हूँ, कहती है कि उसने अपनी बीवी को बिठाया, उसने कहा देखो तुमने मैंने अब इसे एक छत के ही नीचे रहना है, अगर तुम तहज्जुद नहीं पढ़ोगी तो मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा। पक्का था ना बात का? उसने अपनी बीवी को ना सिर्फ ये कि 5 नमाजों में बल्कि तहज्जुद में लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बच्चों को भी वही रास्ता दिखाया जो बचपन से अपना रास्ता था। कमियां बेशियां हर इंसान में रहेंगी, लेकिन आप यू शुड बी स्ट्रांग एनफ, इतने मजबूत हो जाएं कि अपनी बात को मनवाएं। ये जो डिल मिल जिंदगी हमारी गुजरती है ना, ढीले डक्कू, ना दीन वालों में अच्छे ना दुनिया वालों में अच्छे, ये कोई मजे की बात नहीं, ये पूरा दीन नहीं है। इसी तरह आपकी बेटी बहुत दीन आली है, आपने उसको बहुत स्ट्रांग बुनियादें दी हैं। अब मैं ये नहीं कह रही अल्लाह ना करे कि हराम हलाल का भी फर्क ना करे मर्द, नहीं, फिर कम अज कम अगर मीडियम दर्जे का दीनदार भी आप उसको ले देंगे ना एज अ हस्बैंड, आप देखिएगा आपकी बेटी में वो कॉन्फिडेंस होगा, वो अपने मर्द को ले आएगी दीन पे। मैंने ऐसी कई लड़कियां देखी हैं, शादी हुई लड़के क्लीन शेव थे, मंगनी पे क्लीन शेव थे, शादी पे थे, साल बाद जाके देखा दाढ़ी हो गई, क्या हुआ जी ये इस बच्ची ने मेरी दाढ़ी निकाल दी है। अब वो मजाक में करें जिसमें के, लेकिन अच्छी बात में असर होता है। आपका मेयार क्या है ये देखें। अच्छा बाद में हम रोते हैं, नस्लें खराब, पोते पोतियां बिगड़ गए, नवासे नवासियां बिगड़ गए, जाती हूं तो दिल जलता है कुड़ता है, पर सब्र करती हूँ। फिर उन्होंने कहा बच्चे की सालगिरह पाए, फिर जाना तो पड़ेगा नानी जो, ये है हमारी मसले। आपके मेरे ये मसले खुद साख्ता हैं कि हम पूरा दीन नहीं लेते हैं। ना नानी से उम्मीद रखे कोई, ना दादी से उम्मीद रखे कि वो अल्लाह के हुक्म को पीछे डालकर उसकी बात पे चल पड़ेगी। आप कहते हैं कि ये छोटी सी बातें हैं, मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बातें हैं। हमारी आज बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारे जो दुख है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह अधूरा इस्लाम है। लिख के देख ले, पूरा इस्लाम पूरी खैर लेकर आएगा, अधूरा इस्लाम अधूरी खैर लाएगा। मैं अपने ऊपर लेकर ये बात अक्सर अल्लाह ताला से करती हूँ और सोचती हूँ कि अल्लाह तू ये तो बता, यानी जो एक जहन में छोटी छोटी बातें चलती हैं ना कि पूरा इस्लाम है कि आधा है, कैसे पता चलेगा आपको अपने बारे में? क्योंकि हर बंदा अपने आप को बड़ा ही नेक कहता है, ख्याल भी करता है, गुमान भी होता है। तो देख लें, पूरा इस्लाम तो पूरा सुकून, अधूरा इस्लाम तो आधा सुकून। अगर आपकी जिंदगी में पूरा इस्लाम है ना, 100% सेचुरेटेड फील करेंगे, आप अंदर तक खुश है, घर में जाते तो भी खुश होते हैं, स्कूल में आते तो खुश, फैमिली में गए तो खुश, लोग कुछ भी करें लेकिन आपकी खुशी नहीं खत्म होती, तो मान लीजिए कि इंसानी कोशिश के मुताबिक आप इस्लाम पे पूरा अमल करें। और अगर आप एक जगह खुश तो दूसरी जगह रोए, कभी खुश तो कभी नाराज, तो इस्लाम अधूरा है। इवन जब एक बंदा अल्लाह सुभान ताला को राजी करते हुए किसी अपने का दिल भी तोड़ रहा होता है ना, उस वक्त भी उसके अंदर एक सच्ची खुशी का एहसास होता है। ये पूरे इस्लाम की दौलत है। तो इस्लाम के आगे लिख लीजिए इज इक्वल टू पीस। खुशी मिलेगी आपको कब? जब आप सच्चे दिल से पूरे इस्लाम पे अमल करेंगे। और एक बंदा घर में आ जाए पूरे इस्लाम पे अमल करने वाला, यकीन करके देखे नस्ल संवर जाती है। थोड़ी सी फ्रिक्शन शुरू में होगी, बस उसे घबराएं नहीं, परेशान ना हो, आप चलती जाइए, खुद कुछ सालों में सब पीछे आ जाएंगे। उनको पता है कि अब ये टलने वाली नहीं, जो हमारे अपने कदम उखड़ जाते हैं ना, कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे, कभी नमाजें शुरू कभी पीछे, कभी हिजाब कर लिया कभी नकाब कर लिया कभी दोनों ही उतार दिए, ये दूसरों को भी शेकी कर देता है। एक कील है, वो खुद ही दीवार में नहीं ठुका हुआ। आप इमेजिन करें, यहाँ एक कील लगा और वो देखने से लग रहा है झूल रहा है, क्या हम अपनी घड़ी उस पर लगाएंगे? हम कोई खूबसूरत सी पेंटिंग उस पर लगाएंगे? डर क्या पड़ा हुआ है कि ये गिरेगा तो दूसरे को भी गिरेगा। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये जो अधूरे मुसलमान है ना, ये डूब रहे हैं लेकर दूसरों को। इन कच्चे घड़ों पर कौन तकिया करे? हम तो खुद लरस रहे हैं, कांप रहे हैं, हमारी तो अपनी टांगे कांप रही हैं आज इस्लाम के नाम पे। हम किस इस्लाम पे लोगों को बुलाएं? ये जो टेबल है, अगर इसकी टांगे ही कांप रही हो तो क्या ये मैं अपना लैपटॉप इस पे रखूंगी? मैं ये अपनी सारी कीमती चीजें इस पे रखूंगी? कभी भी नहीं रखूंगी। मैं कहूंगी नाना तुम क्या कह रहे हो, मेरा तो ये सारा कुछ नुकसान कर देगा।